ओम शांति। सभी खुश हैं? अब तक की जर्नी आप सबकी कैसी रही? कोई विघ्न तो नहीं आए? थोड़ा बैठने का विघ्न रहा होगा ना? नहीं, जो नीचे बैठे हैं सब खुश हैं? आप देखिए, आपको बाबा ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, आपको बनी बनाई तपस्या हो गया। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, पावरफुल याद अर्थात शरीर मन बुद्धि और दिल एक बाप के साथ हो। अभी मन बुद्धि दिल किसके साथ हो तो पता नहीं, आप सब जानो, लेकिन आपके शरीर रह गया बाबा के साथ, बाबा की याद में, है ना? बहुत अच्छा, आप सबने सहयोग दिया। अभी 3 दिन से आप सभी पुरुषार्थ और कई बातें सुन रहे हैं। अभी अगले 45 मिनट कुछ रिसर्च की बात कर लेते हैं। बोर तो नहीं होंगे आप सभी? क्योंकि रिसर्च की बात करना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो हमारे साथ अभी सुशील भाई हैं, बाबा के बच्चे, और वो साइंटिस्ट हैं। एक डिपार्टमेंट है DRDO की, इनमास के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस। उसमें बायोमेडिकल जो डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें आज हेड काम करते हैं, एक एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं उसी डिपार्टमेंट के, और लगभग 10 वर्षों से सुशील भाई के सहयोग से, और हम कई जो आप कल देख रहे थे हमारी प्रेजेंटेशन में, अलग अलग जो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके साथ मिलकर हम लोग साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो मेन सुशील भाई ही करते हैं। भाई साहब जब थे, रमेश भाई और अंबिका बहन, खास इनको ये सेवा दिया है कि बाबा के घर में जो भी रिसर्च हो, सिर्फ स्पार्क की बात नहीं है, अलग अलग विंग्स में जो भी रिसर्च होते हैं सुशील भाई गाइड करते हैं। इनकी बहुत बड़ा नेटवर्क है और आज फैकल्टी अलग अलग डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूशन में, और जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो आज हम उनसे सुनेंगे स्पार्क की तरफ से जो रिसर्च हुए हैं उसकी रिजल्ट, और करंट कौन सी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और फ्यूचर प्लानिंग क्या है उसके बारे में। ये आपको इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि कई बार भाई बहन बोलते हैं कि पुरुषार्थ की बात तो है लेकिन रिसर्च क्या चल रहा है, और आप हर वर्ष हम 1 घंटा सेशन इसी पर रखते हैं, और इस वर्ष आप हम एक्सपेक्ट करेंगे इस सेशन के बाद। आपको क्यों सुनाया जा रहा है? इसलिए सुनाया जा रहा है कि आपके संपर्क में कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऐसे बीके भाई या तो जो संबंध संपर्क या कई आत्मा जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए बहुत कुछ रिसर्च करना है। हम थोड़े थोड़े टॉपिक पर काम किया है, होलिस्टिक रिसर्च जो रमेश भाई चाहते थे वो अभी तक नहीं हुआ है। अलग अलग फील्ड की वो बात भी सुनेंगे, आप सभी ध्यान से सुने। ये सेशन आप सभी के लिए आज स्पार्कलर लर्निंग सेशन है, और मैंने कल भी रिपीट किया था, आपको जो 5 पेज इंग्लिश में दिया गया है स्पार्क के बारे में, आप उसको सभी पढ़ना जरूर। और जब रिसर्च की बात आए, कोई भी साइंटिस्ट हो या इंटेलेक्चुअल्स हो, आप उनको इसी आर्टिकल की कॉपी भी दे सकते हैं और इसके थ्रू बात भी कर सकते हैं। सुशील भाई,
ओम शांति। सुशील भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि जो भी हमारे रिसर्च चल रहा है, बाबा ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपने बच्चे को इसी स्थान पर रखा, जो हम लोग सीधा एंट्री तो नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू सुशील भाई जो बाबा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही पकड़ा, फिर वहां से जो भी चालू हुआ, जो भी रिजल्ट फिर ऑल इंडिया और ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ही सारे कॉन्टेक्ट, उनके ही सारे संबंध जो बाबा ने फॉरिन तक भी जो ले गए, सब जो सुशील भाई को अपना इंस्ट्रूमेंट बना के सारा कर रहे हैं। इसलिए हम और आप सब की ओर से विशेष विशेष सुशील भाई को थैंक्स है, जो कुछ भी हो टाइम लेके आते हैं। ओम शांति।
अब रिसेंटली 3-4 महीने पहले डॉक्टर विजय भटकर जी, वे बड़े साइंटिस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं, वो कई बार अच्छी रिसर्च की उपलब्धि के लिए अवार्ड देते हैं, और इनको उन्होंने बुला के अवार्ड दिया है, वास्तविक अवार्ड, एक अवार्ड है वास्तविक के नाम से, तो उनको मिला है। अभी रिसेंटली एमिटी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर उनको अवार्ड भी दिया गया, और ऑफिशियली एज ए प्रोफेसर अपॉइंटेड हुए हैं, साइंटिस्ट के साथ साथ प्रोफेसर। एमिटी यूनिवर्सिटी की जो भी ब्रांचेस हैं ऑल वर्ल्ड में, और ये जाएंगे और बाबा की मैसेज दे, बहुत खुशी की बात है। ये लौकिक में जाते हैं लेक्चर देने के लिए, लेकिन वहां भी बाबा की बात सुनाते हैं, बड़े जैसे कहते हैं लूसिड मैनर में, पता ही नहीं चलता है, ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सुना के आ जाते हैं। और साथ में जब भी जाते हैं वो जरूर मुझे कहते हैं कि श्रीकांत भाई हम मना लखनऊ जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, जहां भी, तो आप चाहो तो मैं एक दिन समय बाबा के बच्चों के लिए दे सकता हूं। तो ये बड़ी निर्माणता है जब से आए हैं रमेश भाई, बड़े उम्मीद के साथ इनको स्पार्क की रिसर्च एडवाइजर बनाए हैं, और वास्तव की बात कहा जाए कि जो उनको अवार्ड मिला है सुशील भाई की सहयोग से, हम काफी हद तक बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप सबकी भी सहयोग चाहिए। अभी अकेले इतना मेहनत किया है, अभी 800 भाई बहन आए हैं, अगर 800 में से अगर 100 ऑर्गेनाइजेशन आपकी संबंध संपर्क से जुड़ गए तो कितना बड़ा रिसर्च होगा। और देखा जाए ये जहां पर भी सेवा किए हैं आप जैसे भाई बहनों के सहयोग से, उनका कहना था कि हम जहां भी जा रहे हैं कोई बीके बहने या भाई वहां अगर संपर्क में है आप उनको लेके चलेंगे और उनकी सहयोग से सेवा होगा, ऐसे जहां जहां भी हुआ है सेवाएं। तो आप ध्यान से सुनेंगे और रिसर्च क्या हो रहा है, कभी पूछे आप, कोई बीके भाई बहन पूछते हैं कि स्पार्क में क्या रिसर्च होता है, आप जरूर सुनाइए इसको, इसलिए सेशन रखा गया है। अगर आपको नींद आए थोड़ा सा अटेंशन देने, क्योंकि लर्निंग सेशन है ना, जरूरी है जरूरी नहीं है, अभी नींद नहीं आएगी 1 घंटे तक, बहुत बहुत खुशी की बात है। ठीक है सुशील भाई,
ओम शांति। दीदी ने और श्रीकांत भाई ने बहुत बोला, बट मैं केवल ये कहना चाहूंगा, मुझे प्राउड होता है कि मैं पिछले 20 वर्षों से सब परिवार बाबा का बच्चा हूं और शक्तिनगर सेंटर का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा का ऐसा स्पेशली मेरे पास में ब्लेसिंग है, भाग्य बनाने का, कि मेरा जो प्रोफेशनल वर्क है और जो ये कार्य है इसमें बहुत अच्छा मैच है, बिकॉज मैं जो प्रोफेशनल में कार्य कर रहा हूँ, हम अपने ब्रेन की एबिलिटीज को, जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनको कैसे बढ़ाएं जबकि वो स्ट्रेस में वो और डिक्लाइन करती हैं, वो रिड्यूस होती हैं, तो उनको कैसे बढ़ाएं, मेरा स्थूल में वो वर्क है, और उस स्थूल के वर्क में भी उसको बढ़ाने में एक टेक्निक हम लोगों ने मेडिटेशन, तो राजयोग का मेडिटेशन पे भी उसमें उस तरीके से कार्य शुरू हुआ। तो मैं तो कहता हूँ बाबा ने ही ऐसा सौभाग्य दिया कि मेरा कार्य प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल मैच करता है, तो इसलिए वो संभव ना हो पाई है। सो ओम शांति। मैं शेयर करूंगा, पहले तो आप लोगों से स्पार्क का सभी लोगों को परिचय है, बट मैं शुरू में केवल दो लाइन कहना चाहूंगा कि स्पार्क का कई सेंटर्स पे, चूंकि जैसा श्रीकांत भाई ने शेयर किया, मेरा जाने का मौका मिला, तो मैंने कई दफे ऐसा महसूस किया कि स्पार्क मीन लोग, जो हमारी बड़ी दीदी बहने या वहां के विद्यार्थी, कई दफा ये समझते हैं कि केवल जो इंटेलेक्चुअल या पढ़े लिखे या पीएचडी लोग हैं, ये केवल उन्हीं का कार्य है। नहीं, हमारा स्पार्क बोथ डबल फोल्ड है। एक जो हमारी बहन भाई बड़े माताएं जो केवल बाबा के ज्ञान में पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल हैं बट स्थूल में पढ़े लिखे नहीं है, उनकी भी उतनी ही जरूरत है जितना पढ़े लिखे बाबा के बच्चों की, सो कॉल्ड स्थूल के पढ़े लिखे बाबा के बच्चों की। क्योंकि अगर हम जब किसी भी, जो भी हम रिसर्च आप लोगों से शेयर करेंगे, अगर स्टडी की बात करें, तो वो बिना उन लोगों के द्वारा जिन्होंने बाबा की मुरली अव्यक्त व्यक्त प्लस दीदी दादियों के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, और उस उतारने के बाद में जो उनके या उनके कार्य क्षेत्र में जो चेंजेस आए हैं, उन्हीं को मेजरमेंट करने का कार्य वो साइंटिफिक वे में किया गया है, तो बिना उसके किए तो ये संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले उन्हीं का रोल है, तो हर एक के रोल डिफरेंट टाइप के हैं। दूसरा जो मैं शेयर करने जाऊंगा वो जरूर ऐसा है कि हमारे जो बाबा के बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस तरीके से इस ज्ञान को उन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में लगाकर हम बाबा की प्रत्यक्षता में कैसे साइंटिफिक टूल्स या उस फील्ड के टूल्स को यूज करके प्रत्यक्ष करें, तो उसकी एक्सेप्टेंस, जब आप लोग किसी भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप की सेवा करने जाते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। तो इस उद्देश्य को लेकर मैं प्रेजेंटेशन को शेयर करूंगा। तो दिस इज ए ब्रीफ रिव्यू रिगार्डिंग साइंटिफिक रिसर्च, और ये विजन और मिशन मैंने आपसे शेयर कर दिया, तो मैं सीधे आता हूं कि हमारे जो आज की डेट में जो प्रेजेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें सबसे पहला जो कार्य किया गया है वो कार्य किया गया है मेनली, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि जो अफेक्ट हमारी बॉडी पर जब आता है, शरीर पर जब आता है, पहले वो मन में, जो बाबा कहता है ना मन बुद्धि संस्कार, पहले वहां से शुरू होता है। तो अगर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखना है तो वो मन बुद्धि और संस्कार पर, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में उस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि हम ब्रेन के पैटर्न्स, कार्डियक पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स और कॉग्निटिव पैटर्न्स, कहने का मतलब हमारे ब्रेन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी सहायता से, या हमारा ECG होता है उसकी सहायता से, या हमारे कॉग्निटिव स्केल्स डिफाइंड होते हैं जिनसे बौद्धिक क्षमताएं कौन सी बोली जाती हैं हमारी, जो हम हर समय यूज करते हैं। जैसे आप सब लोग भी इस समय अगर सुन रहे हैं तो कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ मेमोरी में डाल रहे हैं, कुछ आगे के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो ये सब हमारी बौद्धिक क्षमताएं आती हैं, जिनको हम बोलते हैं मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सो ऑल काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ये हमारे सारे हर समय हर व्यक्ति के द्वारा मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्ड टू ओल्ड एज, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल स्टडिंग चिल्ड्रन टू कॉर्पोरेट प्रोफेशनल टू डिफेंस प्रोफेशनल टू
ओल्ड एज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बड़े ओल्ड एज में होने के बाद में अगर ब्रेन की एबिलिटीज पूरी तरह नहीं यूज होती हैं तो कुछ लोग पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, वो जो भूलने की बीमारी हम जिसे बोलते हैं, उससे सफर करने लगते हैं. लेकिन रिजल्ट्स बताते हैं टेक्नोलॉजी या मेडिटेशन दोनों को अगर यूज किया गया तो उसकी ड्रास्टिकली लो हो जाती है प्रोबेबिलिटी. कहने का मतलब ब्रेन मेडिटेशन की वजह से वो पोर्शन एक्टिवेट हो जाते हैं जो अदरवाइज जब हम ज्यादा उम्र में जाने की वजह से उनका अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से वो हमें डिमेंशिया या इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इसलिए वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग उनके बेसिस पर हमारा कार्य, तो उसमें फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट में क्या फर्क आते हैं, तो मैंने जैसा शेयर किया आपसे, तो मेनली किया जाता है इमोशनल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ. मैं इसको भी केवल एक मिनट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि हम में से जो बाबा के बच्चे हैं, यहां पर तो सभी बाबा के बच्चे हैं, बट कई दफे हम अपने इमोशंस को ही डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि मैं इस इमोशनल स्टेट में हूं. और जैसे ही हम अगर पूरी तरह इमोशनली अवेयर होते हैं तुरंत ही हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं. जैसे ही हम अपने इमोशंस की स्टेज के बारे में जानते हैं तुरंत हम उनको रेगुलेट कर पाते हैं, और जैसे ही हम उनको रेगुलेट कर पाते हैं तो तुरंत हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, वो तुरंत वापस बेहतर हो जाती है. और जैसे ही वो बेहतर होती है तो हमारा बिहेवियर उसके हिसाब से, तो हमारे अंदर वो साइकोलॉजिकल चेंजेस, और जैसे ही हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उसी हिसाब से हमारे जो हार्ट रेट है, सो ईसीजी पैटर्न्स हैं, जो ब्रेन पैटर्न्स हैं, वो हमारे पूरी तरह काबू में आ जाते हैं. और जब हम अपने स्वयं के काबू में होते हैं, जो बाबा का ज्ञान बताता है, तो जैसे ही हम अपने ज्ञान काबू में आते हैं तुरंत ही हम जो सोशल यूनिट हैं हम, तो हम सोसाइटी के बारे में पूरी तरह अवेयर रहते हैं और उनका भी ख्याल और उनका भी अच्छे में, तो सोशल हेल्थ भी हमारी अच्छी हो पाती है. तो इससे रिलेटेड जो हमारा पहला जो ये प्रोजेक्ट जो शेयर किया गया था उसका डीआरडीओ में डीआरडीओ के जो चीफ हैं उस समय के, उनका यहां पर सर कॉन्फ्रेंस में आना हुआ. आज भी वो डॉक्टर वी के सारस्वत हमारे नीति आयोग के मेंबर हैं, और उस समय वो हमारे डीआरडीओ के चेयरमैन थे, और उनको यहां की कार्यप्रणाली इतनी प्रभावित की कि उन्होंने ये कहा कि जब इतना अच्छा कार्य स्पिरिचुअल में हो रहा है तो स्पिरिचुअल के कार्य को हम अपने कार्य में किस तरीके से लेके और किस तरीके से करें. तो उसके लिए उन्होंने फिर हेडक्वार्टर में एक मीटिंग कराई जिसमें मेरे साथ में जो दीदी और श्रीकांत भाई बैठे हुए हैं, ये भी और भी कई स्पार्क के हमारे जोनल मेंबर्स और वो सब हेडक्वार्टर में डीआरडीओ के में आए. फाइनलाइज्ड हुआ कि तीन लैब मिलके जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज, जिसमें मैं हूं इन मास, डीआईपीआर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड डिपास डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, तो इन तीन लैब्स के कोलैबोरेशन के साथ शक्ति नगर सेंटर के मेन कोलैबोरेशन से, बट दिल्ली के सभी सेंटर के सहयोग से इस प्रोजेक्ट का एक शेप लिया गया जिसमें हमारे 120 भाई बहन के सहयोग से कार्य किया गया था. और उसमें 40 मतलब तीन ग्रुप बना दिए गए थे, 40 जो एक साल से कम के बाबा के बच्चे हैं, मतलब ज्ञान की उम्र एक साल से कम की है, 40 जो एक साल से पांच साल के हैं, और 40 जो पांच साल से पुराने बाबा के बच्चे हैं. तो इस तरीके से उस पर वो स्टडी की गई और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए. और उसके बाद में ये तो किया गया उसी समय के 90 डेज के ऊपर, बट देन इसके जब रिजल्ट बहुत प्यारे आए तो एक लंबा प्रोजेक्ट चला, जो मेरे यहाँ के प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट था डॉक्टर कनिष्क शर्मा, उस समय वो पीएचडी कर रहा था, उसने बाबा के पूरे राज्य का मेडिटेशन पर ही पीएचडी अपनी वहां से कंप्लीट की थी, और अप टू द लेवल ऑफ जो हमारे लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स कहलाते हैं. लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स का मतलब जो बाबा के बच्चे 10 साल से पुराने हैं, तो उनके ऊपर ये कार्य किया गया. और उसमें टोटल टेक्निकल डिटेल में जाने का छोड़ देता हूं मैं, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि उसमें इवन स्ट्रक्चरल लेवल चेंजेस, मतलब उसको तीनों चारों मेथड से टेस्ट किया गया, जो ईसीजी, ईजी, एफएमआरआई, डीटीआई, इवन फंक्शनल एमआरआई को यूज करके और डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग, ये एक टेक्निक होती है एमआरआई में ही, जिसमें पता लग जाता है कि हमारे व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, उसमें किस टाइप के इवन स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं और उसमें भी बेहतर पाया गया। तो वो एक स्टडी कंप्लीट हुई थी हमारे इनमास में। देन उसके बाद में एक जो अभी चल रहा है, ये स्पिरिचुअल असेसमेंट स्केल है, और इसमें चूंकि बाबा के बच्चों के लिए ही ये केवल डिफाइन किया गया है, इसीलिए इसका नाम भी अभी स्पिरिचुअल असेसमेंट स्केल है। लेकिन इसके रिजल्ट जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इन एसोसिएशन विद ब्रह्मा कुमारीज जो इसको फॉर्मुलेट करके लेके आया है और रिजल्ट आ रहे हैं, तो वहां की जो सेकेंड सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अरुणिमा, उनका कहना है कि ये वर्ल्ड में पहले टाइप की स्टडी होगी। तो ये न केवल बीके इस पे अप्लाई की जाए, ये इतना बढ़िया स्पिरिचुअल असेसमेंट स्केल बन के आएगा कि जो और भी जो स्पिरिचुअल या जो हम लोग बोलते हैं एक शब्द कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं, उनके लिए भी यूटिलाइज किया जा सकेगा। और इसमें क्या क्या किया गया था कि उसमें ये लिया गया था कि हमारे जो आत्मा के सातों गुण हैं, वो हमारे पास जो ये छह पॉइंट्स हैं, चाहे वो फैमिली डोमेन से रिलेटेड या प्रोफेशनल डोमेन से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, अगर किसी भी बाबा के बच्चे के पास में इनसे रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो हम वो सातों गुणों को किस स्केल में किस तरीके से यूज करते हैं। सपोज करिए फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ में किसी के बच्चे को कुछ चैलेंजेस, बच्चे के साथ में चैलेंजेस बात करने में, उसको हैंडल करने में आते हैं, तो हमने लव को यूज किया, ब्लिस को यूज किया, नॉलेज को यूज किया, किसको किस लेवल पे यूज किया, इस तरीके से इसको हमने केवल उस समय केवल छह डोमेन में और सातों गुणों को लेकर इसको इवेल्युएट किया गया है। उसके बहुत ही प्यारे रिजल्ट आ रहे हैं जैसा मैंने आपसे शेयर किया। देन ये मैंने केवल शेयर किए थे आपको जो डीआरडीओ से रिलेटेड रिजल्ट थे, बट हमारे जो स्पार्क के थ्रू जो हमारे अदर देन डीआरडीओ जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेशंस किए गए, उसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस। ये बेंगलोर का मेंटल हेल्थ के लिए प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, और उसमें भी हमारे दो भाई स्पेशली अजय भाई और रजनीकांत भाई, उनकी मैं दो स्टडी शेयर करता हूं। सबसे पहले है रजनीकांत भाई का, जिसमें किया गया है लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हैव लोअर इंटेंसिटी विद लेसर नंबर ऑफ वॉक्सल्स इन मेडिकल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। सो व्हाट हैज बीन फाउंड इवन इन केस ऑफ दिस कि जैसे आप देख रहे हैं ना, डिक्रीज्ड डीएमएन एक्टिविटी is indicative of a better cognitive process। मतलब इसको बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN, और उसको अगर नेचुरल लैंग्वेज में मैं बोलता हूं तो जब ब्रेन कुछ नहीं करता है तब क्या करता है। सो जैसे हम कंप्यूटर में बोलते हैं ना बाय डिफॉल्ट, सो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में उस समय क्या होता है। तो जिन लोगों को ये पाया गया है कि अगर हाइपर एक्टिव या उस स्टेट में रहते हैं तो उनका उस समय भी ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो उसका उन्होंने शेयर किया था कि डिक्रीज्ड डीएमएन एक्टिविटी indicates a better cognitive results. And then जैसा मैंने आपसे शेयर किया अजय भाई का, और उनका वाला था कि मेडिटेशन प्रैक्टिस डज इम्प्रूव वेल बींग एंड दैट प्रोफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर कोरिलेटेड विद मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ वेल बींग देन ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस. दैट मीन्स उन्होंने जो इवन 1 मिनट मेडिटेशन वाला उसका भी जिक्र किया है कि नॉट ओनली दैट कि जो हम लोग अभी तक जैसे मैंने रिजल्ट शेयर किए कि इवन लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स में उस टाइप के इफेक्ट आते हैं, तो इवन शॉर्ट टर्म मेडिटेशन भी जो जैसे हम लोग हर समय ट्रैफिक कंट्रोल और उस सब का जो बाबा के बच्चे हैं हम लोग हर समय अपनाते हैं, तो उस समय उस जस्ट ए मिनट मेडिटेशन के भी किस टाइप के इफेक्ट हैं उसको भी उनका कवर किया गया. मैं इस स्लाइड के साथ में अभी इवन करंट का आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा. बेंगलोर में श्रीकांत भाई का मेरा दीदी के यहां सेंटर पे जाना हुआ, और अभी जो आप इसमें नाम देख रहे हैं प्रोफेसर बिंदु कुटी, उनके साथ में वहां पर अब खुलकर आ रहा है सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज. सो निमेंस में सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज फॉर्मुलेट हो रहा है, और उसमें ब्रह्मा कुमारीज के साथ किस तरीके मिलकर आगे का उनका फ्यूचर प्लान क्या किया जाएगा वो पूरा फॉर्मुलेट हो रहा है. तो मतलब पूरे सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज में, चूंकि वो तो एक सेंटर है तो और भी प्रैक्टिशनर्स को लेंगे, बट बीके के साथ में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और उसका रोड मैप पूरा प्लान हो रहा है. सो वो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज अगर इस टाइप के मेंटल हेल्थ के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में ब्रह्मा कुमारीज के एसोसिएशन में साथ में होके आता है तो एक बहुत अच्छा रिसर्च का एक कंटिन्यूस प्रोसेस चालू हो जाएगा. सो दैट विल बी एस्टेब्लिश सेंटर इन एसोसिएशन विद ब्रह्मा कुमारीज एंड दैट विल बी प्लान फॉर इट. ये कुछ आप लोगों से दिखाने के लिए कुछ पेपर्स यहाँ पे ग्लिम्स दिए हैं, बट ये केवल कुछ पेपर्स नहीं है. अब कई पेपर्स कई सेंटर्स से नेशनल और इंटरनेशनल में हम लोगों के स्पार्क विंग के प्रोसेस के द्वारा कई जगह पर पब्लिश हो चुके हैं, अच्छे जर्नल में एंड मोस्टली इंटरनेशनल जर्नल्स में है, और मोस्टली बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में है. मतलब जो जर्नल्स का भी एक वैल्यू होता है, तो अगर हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स में हो तो उसका रिकॉग्निशन वैल्यू बहुत अच्छा होता है. और कुछ स्टडीज अब इनको कहते हैं हम लोग साइटेशन, कि वो जर्नल्स के वो वाले पेपर अगर बार बार कोई और रिसर्चर उनको रेफर करता है तो उनका साइटेशन इंडेक्स बढ़ जाता है. तो इनमें से कई पेपर्स वो साइटेशंस में भी अब बहुत अच्छे से जा रहे हैं. जैसे कुछ पेपर हैं जो कॉन्शियसनेस में गए हैं, कुछ पेपर हैं जो ब्रेन कनेक्टिविटी, ये प्रोमिनेंट जर्नल हैं, या कुछ पेपर हैं जो फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी, जो ये फ्रंटियर्स के जर्नल्स हैं उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है. तो इस टाइप के सभी प्रोमिनेंट जर्नल्स में ये पेपर पब्लिश हुए हैं. देन न केवल ब्रेन और इसका ही जो हमने अभी तक बात किया, उसके अलावा भी कई जगहों पे इनके हमारे इफेक्ट्स राज्यों का मेडिटेशन के. दिल्ली में एक प्रोमिनेंट सेंटर है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिलेटेड, जहां पर हमारी एकता बहन जो आप सभी लोग जानते ही हैं, आप कल भी देखे ही हैं, मिले ही हैं, वो पिछले मोर देन 10-15 ईयर्स से वो वहां पर सेवा करती रही हैं. बट जब इतनी अच्छी सेवा होती रही थी तो अब उसको एक रिसर्च का शेप दिया गया, और उसको पहले एक पायलट स्टडी में लिया गया था कि उसका न केवल पेशेंट पे बल्कि केयर गिवर्स पे, तो मतलब केयर गिवर्स में उनके बहन भाई माता पिता पत्नी कोई भी हो सकते हैं, और न केवल वो बल्कि नर्सेज और डॉक्टर्स पे भी उनका नजरिया किस तरीके से चेंज हुआ और उनके ट्रीटमेंट के मेथड्स में किस तरीके से इफेक्ट आए. तो उसका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, और न केवल अच्छा हुआ उसकी वजह से फिर उन्होंने प्रॉपर एथिकल वे में करके उसको प्रोजेक्ट की शेप में देके तब उसका रिजल्ट निकाला गया, जो मैं आगे में शेयर भी करूंगा कि एकता बहन उसको शेयर करने के लिए इवन जापान गई, उसको वहां जापान में जाके उसको शेयर करके आई थी। देन आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोगों के जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप करके यंगस्टर्स के लिए वो एक कैंप लगते हैं, और ओआरसी दिल्ली में तो वो हर साल और कुछ महीनों के लिए वीकली, हर वीक के लिए वो लोग आते हैं और बड़े ग्रुप में आते हैं, तो वो पहले से ही सेवाएं चल रही थी, तो लेकिन उसमें भी ये प्लान बनाया गया। और जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं हरियाणा में डॉक्टर शिखा त्यागी, उनके एसोसिएशन के साथ, हमारी बीके हैं, उनके एसोसिएशन के साथ ओआरसी में उनके प्री एंड पोस्ट, जब वो इंटीग्रेशन कैंप में सारे बच्चे आए तो उनके बिहेवियरल पैटर्न और उनके सब स्किल्स में क्या क्या स्टडीज थी, और फिर जब वो फाइनली वो कैंप पूरा खत्म हो गया उसके बाद में जब वो वापस जा रहे हैं तो पोस्ट उनका इवेल्युएशन किया गया, और उसमें बहुत अच्छे स्टडीज रिजल्ट पाए गए। उदाहरण के तौर पे केवल WHO का एक QOL क्वालिटी ऑफ लाइफ करके एक स्किल होता है, तो ये पाया गया कि उनका QOL स्किल वॉज क्वाइट बेटर। सो दैट्स हाउ दीज वर द रिजल्ट्स। देन जब हम लोगों के यहां पर कुछ ही हम शेयर कर पा रहे हैं, सारे नहीं बिकॉज कई सारी स्टडीज हैं, तो जब ये कई जगहों पे हमारे अच्छे रिजल्ट्स आए तो देन फाइनली इट स्टार्टेड विद कि व्हाई नॉट वी कोलैबोरेट विद देम। तो किसी भी इंस्टीट्यूशंस के साथ में अगर हम कोलैबोरेशंस मींस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो उनको भी आसानी रहती है बिकॉज वो रिटन फॉर्मेट में हो जाता है, और हमारे भी बाबा के बच्चों का उस तरीके से सहयोग एवं जो मैंने पहली बार शुरुआत की थी कि कई दफे वो लोग शब्द यूज करते हैं कि हमको मेडिटेटिव सब्जेक्ट्स चाहिए, जब वो स्टडी करेंगे तो मेडिटेटिव सब्जेक्ट्स, दिस इज द प्राइम एंड प्री रिक्विजिट फॉर देम। अगर उनको भी कोई स्टडी करनी है जिसमें वो बाबा के बच्चों पे स्टडी करना चाहते हैं इवन विदाउट एसोसिएशन ऑफ अस, तब भी उनको हमारी जरूरत होती है। तो बाबा के बच्चों की जो बाबा के ज्ञान में उचित हैं तो उनकी तो हर समय हर जगह पे जरूरत है, वो मैसेज मैं कहना चाहता था। तो उसके साथ में ये कोलैबोरेशंस किए गए, तो जो हमारा इंडिया का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, उनके साथ MOU हुआ। उसके बाद में डॉक्टर भटकर, उनकी जो मल्टीवर्सिटी है पुणे में, इंडिया इंटरनेशनल मल्टीवर्सिटी, उनके साथ MOU हुआ। और फिर डॉक्टर MGR एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज इन चेन्नई, तो उनके साथ MOU हुआ। अभी कुछ और प्रोसेस में है तो अभी वो हमने नहीं शेयर किए हैं, बट साथ ही साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में जैसे मैं डॉक्टर कनिष्क का जो आपको रिजल्ट बता रहा था कि उन्होंने लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स पे भी किया, तो यहां पर भी माउंट आबू में भी वो कई दफे रह के बाबा के बहुत सारे जो पुराने जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स हैं उनके बच्चों का डाटा कलेक्ट करके लेके गए थे। तो जब उन्होंने उसको इंटरनेशनली पेपर पब्लिश करने के टाइम में विदेश में जाना हुआ तो वहां पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख के प्रोफेसर आए हुए थे और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि हम भी इस डाटा पर काम करना चाहेंगे। तो बाबा के बच्चों का ये जो ब्रेन का डाटा था वो वहां पर दिया गया, और जब वहां पर दिया गया तो उन्होंने जो रिजल्ट निकाले यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में, तो उनके भी रिजल्ट को बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि इस टाइप का जो ब्रेन नेटवर्क का रिजल्ट है वो उन्होंने पहले नहीं महसूस किया था। और इवन माइक्रोस्टेट एनालिसिस, कहने का मतलब सोर्स लोकलाइजेशन, सोर्स लोकलाइजेशन बोलते हैं कि हमारे किस पोर्शन में किस बैंड का किस पोर्शन के एक्टिवेशन से अल्फा एक्टिविटीज में या बीटा एक्टिविटीज में या डेल्टा एक्टिविटीज में किस टाइप के चेंजेस आए, और फिर फ्रंटल से पेराइटल में, पेराइटल से ऑक्सीपिटल में, ये जो हमारा ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन सेल्फ में होता है वो मेडिटेटिव स्टेट में दूसरा नेटवर्क आता है, स्ट्रेसफुल स्टेट में दूसरा नेटवर्क आता है, वर्किंग प्रोसेसेस में हमारे जो चैलेंजेस होते हैं उसमें डिफरेंट नेटवर्क्स आते हैं, तो उनमें किस टाइप के मेडिटेटिव स्टेट्स में चेंजेस आए उसका स्टडी उसमें दिखाया गया था। और ये जनवरी 2019 की बात है, जब श्रीकांत भाई और हमारा जो हमारे अपने सारे कार्य थे उसके दो पेपर हमारे फ्रांस में एक्सेप्ट हुए, तो चार देशों में जाना हुआ, न केवल फ्रांस, फ्रांस में जहां पर रिजल्ट्स दिखाए गए वो कोइंसिडेंटली दिन भी बाबा का था 18 जनवरी, और 18 जनवरी के दिन में न केवल रिजल्ट हम लोगों ने और वो सब शेयर किए, बल्कि प्राउड महसूस होता है क्योंकि जो हमारे ज्ञान सरोवर में ईजी सिस्टम है यहां पर, उस सिस्टम की कंपनी के द्वारा वो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, बट वो सिस्टम पूरे संसार में उन्होंने बहुत जगह पर बेच रखा है और वो बहुत कार्यों में यूज करते हैं। तो वहां पे 67 डिफरेंट कंट्रीज से उसको यूज करने वाले वैज्ञानिक आए हुए थे, और जब उनको ये रिजल्ट शेयर किया गया तो वो लोग इतना इम्प्रेस हुए कि श्रीकांत भाई ने 18 जनवरी को शाम को उन सभी लोगों को जमीन पर बिठाकर मेडिटेशन का टेस्ट भी कराया, और न केवल टेस्ट कराया, फिर उन्होंने चैलेंज किया कि हम आपका और यहां के एक भाई का ब्रेन स्टेट, जो बाबा कहते हैं ना अचल अडोल स्थिति, उसको चेक करेंगे। और उन्होंने वो रिजल्ट पाया कि श्रीकांत भाई की स्थिति वास्तव में अचल स्टोल मतलब स्थिर थी, जबकि उनकी बहुत वो थी। और ये भी एक इक्विपमेंट है FNIRS, जो अभी बाबा के घर में ही मान लीजिए मेरे यहां पर आ गया है। ये हम लोग जब नीदरलैंड गए थे तो अब नीदरलैंड के साथ का ये इक्विपमेंट है, जिसपे मेडिटेटिव स्टेट में फंक्शनल नियर इंफ्रारेड इमेजिंग बोलते हैं इसको, और ये FNIR काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ, जो MRI तो सभी ने सुना ही होगा, MRI का रिप्लेसमेंट काइंड है। मतलब हर जगह मशीन नहीं जा सकती है, बट ये FNIR सिस्टम कहीं भी जा सकता है। तो मेडिटेटिव स्टेट्स का हमने इवेल्यूशन करना है, तो वो भी हम प्रोसेस शुरू करेंगे। और इसके ऊपर अगर आप फोटो में देख रहे हैं तो वहीं पर श्रीकांत भाई को बिठा के इनके ऊपर इनका FNIR वहां पर किया गया था। ये नीदरलैंड का है, एम्स्टर्डम में किया गया था। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि दो श्रीकांत भाई और उनका कंपेरेटिव किया गया था, ये उसकी पिक्चर है। और मैं अब वहां से वापस आ जाता हूं फिर इंडिया में, क्योंकि अब हम लोग, हमारी एक मानसी बहन है, आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर मानसी, उनका जेनेटिक्स का एक्सपर्टीज है, तो ये एक प्लान में है, प्रोसेस में है, ऑलरेडी ऑन उनकी सहायता से हेल्प में चल रहा है, कि राजयोग मेडिटेशन का टेलीमोर्स बोलते हैं कि इनकी लेंथ में जैसे ही एजिंग होने लगती है, तो अगर आप ये देखें तो ये छोटे होने लगते हैं, तो अब मेडिटेटर्स के केस में ये लंबे रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो इसके ऊपर ये स्टडींग बहुत सारी ऑलरेडी अदर प्रैक्टिशनर्स पे की गई हैं, जैसे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन पर, या ए मेटा एनालिटिक व्यू द इफेक्ट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन में टेलीमोर स्टडी, और दूसरा स्टडी है ये टेलीमोर लेंथनिंग आफ्टर 3 वीक्स ऑफ एन इंटेंसिव इनसाइट मेडिटेशन रिट्रीट। ये औरों के द्वारा किया गया है, बट अब ये हमारा प्लान है कि हम एक जो गुजरात में ही यूनिवर्सिटी है उनके साथ मिलकर लॉन्ग टर्म राजयोग मेडिटेटर्स पर, मतलब जो 10 साल से बाबा के पुराने बच्चे हैं उनका, और कंट्रोल ग्रुप लेते हुए जिसमें नॉन मेडिटेटर्स को भी लेते हुए, उसका ये जेनेटिक स्टडी का किया जाए। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड जो दिखाने जा रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है साइंटिफिक बार दिख रहा है, ये बिल्कुल हमारी लेटेस्ट स्टडी है, और ये किया गया है साइकियाट्री हॉस्पिटल है, जो आप नाम पढ़ रहे होंगे, करनाल में कल्पना चावला साइकियाट्री हॉस्पिटल है, और करनाल के ही हमारे बीके सेंटर के सहयोग से वहां पर जो साइकियाट्री हॉस्पिटल में डिप्रेशन के पेशेंट जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सविता करके वहां साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास में आते हैं, तो उनके सहयोग से 5 दिन का मेडिटेशन कराया गया, राजयोग मेडिटेशन, और उनका प्री एंड पोस्ट एनालिसिस किया गया है, और ब्रेन रिलेटेड डाटा लिया है और साइकोलॉजी रिलेटेड डाटा लिया है, दो तरह के डाटा लिए हैं और आप मुझे नहीं मालूम इतनी दूर से वो दिख रहा होगा या नहीं, बट जैसे ये नीचे वाला बिफोर मेडिटेशन है और सेकेंड लाइन में अगर आप देखेंगे तो कुछ कम कलर दिख रहा है और ऊपर वाले में देख रहे हैं तो ब्लू ही दिख रहा है। तो ये इसका मीनिंग क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है कि ये लिटरेचर सजेस्ट करता है कि ये टेम्पोरल और फ्रंटल, टी जहां पर लिखा हुआ है दैट मीन्स टेम्पोरल है और फ्रंटल, फ्रंटल मीन्स ये वाला और टेम्पोरल मीन्स ये वाला पोर्शन का, तो इनके रिजल्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बताया था और उस समय मैंने शेयर किया था कि इनका ये पोर्शन फिर भी एक्टिव रहता है, वो साइलेंट वाली स्टेज में नहीं जाता है। और इसको समझाने के लिए मैं तीन चार थोड़ा सा साइंटिफिक स्लाइड है बट मैं बिल्कुल प्लेन वे में सभी के साथ शेयर करूंगा।
यहाँ हाल में अगर चंडीगढ़ की रेखा बहन या तो मधुबेन वो तो स्टेज के पीछे एक भाई से मिल लिया, रेखा बहन या मधुबेन चंडीगढ़ की,
तो जो मैं ये रिजल्ट बता रहा हूँ साथ में ये हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल को भी दिखाया गया है कि ये प्री है और जब हम लोगों की पांच दिन का स्टडी खत्म हो गया था तो ये पोस्ट है, तो आप देख रहे हैं डिप्रेशन उनका काफी डाउन हो गया है। और ये वो पेशेंट हैं जिनको ना राज्यों का पता क्या होता है, उसी पांच दिन में समझाने से लेके और उनको जितना भी डिप्रेशन से वो सफर कर रहे हैं, मैं डिप्रेशन का भी सफर करने का दोनों तीनों स्टेज बताना चाहूंगा। एक होता है हम लोग अपने आप में, हम लोग मीन्स नॉट बाबा के बच्चे बट मैं आउटसाइड का कह रहा हूं, कि पता ही नहीं लगता है कि वो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं और उस स्टेज में पहुंच जाना जब आपको साइकेट्री पेशेंट मतलब डॉक्टर को रेफर करना पड़ जाए, तो मतलब वो किस स्टेज में और केवल पांच दिन में अगर ये रिजल्ट शो कर रहे हैं तो कितनी संभावनाएं हैं आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं। और इसको किस तरीके से मैंने जो अभी फ्रंटल और टेम्पोरल का बोला उसको मैं थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में यहां बताने का कोशिश करता हूं कि स्टेप वन में क्या होता है, ये चेन है कि ब्रेन प्रोसेस क्या होता है। मैं खाली एक थोड़ा सा मोटी मोटी लैंग्वेज में बताता चला जाता हूं। जैसे इसमें ये कहता है कि पहले स्टेप वन में क्या होता है कि हमारा किसी भी टाइप के चैलेंजेस आए तो ये वाला पोर्शन प्री फ्रंटल और फ्रंटल ऑक्यूपाई हो जाता है। किसी भी टाइप का आप गौर कर लीजिए, अगर चैलेंज आएगा हमारे पास में जो मैंने साइकोलॉजिकल स्केल स्पिरिचुअल स्केल के टाइम पे बताया था, तो ये ऑक्यूपाई हो जाता है। और अगर ये ऑक्यूपाई हो गया इसका मतलब हमारे पास में रेंडम थॉट्स ही चलने वही उछलने लगेंगे। और इसको फिर उसको संभालते हुए जैसे तरीके से देन स्टेप टू आता है और स्टेप टू में मेडिटेटिव प्रोसेस में किस तरीके से ब्रेन के अंदर जाते हैं। और अगर हमने फ्रंटल को पहले फ्री नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेज आने वाली जो मैं स्टेप टू थ्री फोर जो आपको शेयर करने जा रहा हूं वो स्टेज आएगी ही नहीं। तो स्टेप टू क्या करती है वो हमारी डिक्रीज करती है स्टिमुलाई को पैराइटल लोब में। तो मैंने जो बोला था कि फ्रंटल और पैराइटल और टेम्पोरल इन पे जो इफेक्ट आते हैं तो ये पैराइटल लोब है। और ये पैराइटल लोब क्या काम करती है, ये हमारे को फोकस्ड बनाती है। तो वो वाली स्टेज तक हमारा अगर नहीं पहुंचेगा तो हमारी फोकसिंग उस स्टेज में पहुंचेगी नहीं। और उसके थर्ड स्टेज में जब हम जाते हैं तो हमारा जो एक्सपीरियंस करते हैं और हमारा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी और इस चीजों में जो डालने का प्रोसेस है वो प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये मेडिटेशन की स्टेज है। और अगर हमारे पहला और दूसरी स्टेज हम नहीं क्रॉस किए हुए हैं तो हम कुछ चीज जो मेमोरी में डालना चाहते हैं वो जाएगी ही नहीं। तो इस तरीके से मेडिटेशन हमको ये जो प्रोसेस है, उसके बाद स्टेप फोर में क्या करता है, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस को एक्टिवेट करता है जो हमको फीलिंग ऑफ ब्लिस या प्रोफाउंड एक्सपीरियंस जो हम बोलते हैं वो उस स्टेज में लेके आएगा। तो अगर वो फिर वो रिपीट करूंगा कि वो पहली दूसरी तीसरी स्टेज अगर हमारी क्रॉस ही नहीं हुई है तो हमारा वो प्री फ्रंटल और फ्रंटल में ही अगर अटका हुआ है तो वो स्टेज जाएगा ही नहीं। तो अगर आप भी अपनी मेडिटेटिव स्टेज को अगर रिकॉल करेंगे तो वो सब चेंजेस हमारे धीरे धीरे आते हैं। तो ये मेरा केवल थोड़ा सा शेयर करने का मतलब था। और जो मैंने आपसे शेयर किया कि एक बाबा के बच्चे ने DTI यूज करके कनिष्क ने बताया कि उनमें कॉर्टिकल थिकनेस जो DTI से किया गया वो ये जो मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूं ये स्टैंडर्ड स्लाइड्स हैं कि उसमें कॉर्टिकल थिकनेस में चेंजेस आ जाते हैं और वही हमारे राजयोग मेडिटेशन में पाया गया था। और वो जब चेंज आ जाते हैं तो उससे क्या होता है वो भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा अट्यून्ड कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है, हमारा इमोशनल बैलेंस रहता है, एम्पैथी रहती है और हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन और मॉरलिटी इम्प्रूव होती है। फर्दर बैक आई विल गिव यू दीज स्लाइड्स बिकॉज आई थॉट बिकॉज आई हैव गॉट ए लिटिल कॉन्शियसनेस अबाउट द टाइम ऑल्सो सो दीज आर एक्चुअली फाइव स्टेजेस आई विल गिव यू द स्लाइड्स फॉर दैट बिकॉज दिस आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम नेट बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज इज कि हमारा जो राजयोग मेडिटेशन में जो स्टेजेस जाती हैं तो हम किस तरीके से अपनी उन स्टेजेस को जो बाबा के बच्चे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दादी जानकी मतलब स्विच ऑफ और ऑन करना उनके लिए फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड का काम है बट हम लोगों को शायद प्रोसेसिंग डिले जाता है सो दीज आर द प्रोसेसेस बाय विच और वो लोग किस तरीके से वो स्विच कर सकते तो संभावना हमारे लिए भी है बट उनका अभ्यास वर्षों का है। और ये एक लास्ट स्लाइड मैंने सोचा था इसी साइंटिफिक में लेते हुए कि ये अवेयरनेस का अवेयर होना इज कॉल्ड एज मेटा अवेयरनेस। तो मेडिटेशन की स्टेजेस में हमारे राजयोग मेडिटेशन में स्पेशली वो संभावनाएं बहुत बेहतर रिजल्ट देती हैं। और मैं छोड़ रहा हूं बिकॉज आई एम लिटिल कॉन्शियस अबाउट टाइम सो दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड कि मेडिटेशन काम करता है एक ब्रेन फर्टिलाइजर के रूप में और ये शब्द मेरे द्वारा यूज किए नहीं गए हैं जो वैज्ञानिक हैं जो और लोग स्टडी कर रहे हैं उनके द्वारा बताए गए हुए शब्द हैं और ये हम लोग इस तरीके से मैं यहां यूज करने का केवल एक कारण है बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूं जो हमारे राज्यों का मेडिटेशन पर रिजल्ट लिए गए हैं उसी से रिलेवेंट जो स्लाइड और लोगों ने बोली है वही हम शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड है उसमें दिखाया है कि अल्फा एक्टिविटी अगर जब हम लो लेवल पे मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं और जब हम हायर लेवल पे पहुंचने लगते हैं तो किस तरीके से अल्फा डोमिनेट करने लगता है हमारे ब्रेन पर। दैट मीन्स अगर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हम पहुंच जाते हैं That means we are perfectly cool and calm, but fully alert. So वो stage. And no doubt, मैं केवल alpha की बात कर रहा हूं अगर दादी और उन level पे बात करेंगे तो they cross over that. वो alpha से भी theta stage में पहुंचने लगते हैं तो further better state. So leaving apart. मैं अब लास्ट में कुछ स्लाइड से कम्युनिकेट करना चाहूंगा। हम लोगों ने जो अभी तक कार्य किए हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट कंट्रीज के साथ में एमओयू या रिसर्च के फॉर्मेट में अभी तक का मैंने जर्नी शेयर करने का कोशिश किया था। अब जो मैं नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जैसा श्रीकांत भाई ने बोला भी कि अभी बहुत सारी कार्य क्षेत्रों में इसको अप्लाई करना बाकी है और उसमें भी हम लोगों के द्वारा कई विंग्स के द्वारा ये पूरी सेवाएं हो रही हैं लेकिन अगर उसी को डॉक्यूमेंटेशन में और रिजल्ट फॉर्मेट्स में अगर हम ले जाते हैं तो हम किस तरीके से इनको स्पार्क के द्वारा रिसर्च में कन्वर्ट करके प्रत्यक्षता में और आसानी से जा सकते हैं तो उसको लेते हुए कुछ स्लाइड्स ये कहां कहां पर किस किस तरीके के रिजल्ट्स में बात किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन इन कॉर्पोरेट्स को उनको अपनी लैंग्वेज समझ में आती है कि जब हम बात करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट और जैसे ही मेडिटेशन का कॉर्पोरेट में इन्वॉल्वमेंट जाता है तुरंत उनकी हरेक व्यक्ति की परफॉर्मेंस में बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आता है। मैं उसका एक उदाहरण केवल एक सीईओ का दे देता हूं। मैं आप लोगों से बार बार एक शुरुआत में शब्द यूज किया था कि जब हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं या और भी कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस, तो हमारी बौद्धिक क्षमताओं में चेंजेस आते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, थिंकिंग, ये सब चीजों में जैसे ही चेंज आएगा, तो अगर हम किसी भी कंपनी के सीईओ में इस टाइप के चेंजेस आएंगे, तो पूरा किस तरीके से कंपनी की कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में ही किस टाइप के चेंजेस आ जाएंगे। सो वी कैन डू दीज काइंड्स ऑफ रिसर्च एनालिसिस विद दैट। एंड देन मेडिटेशन एंड डिफेंस, हम लोगों के द्वारा इसमें जो किया गया है प्रैक्टिस का, केवल हमने डीआरडीओ लेवल पे रिजल्ट निकाला है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन डिफेंस में जाने का, बट यूएस डिफेंस माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन को ऑलरेडी उनके सोल्जर्स की इन सब इम्प्रूवमेंट्स के लिए, चाहे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव चेंजेस को बेहतर बनाने के लिए ऑलरेडी यूज कर रहा है। तो ये सब हमारे लिए सेवाओं की पॉसिबिलिटी है, जो रिसर्च की फॉर्मेट में, अगर बिकॉज अगर हम डिफेंस के लिए बात करेंगे तो जब तक ये नहीं बोलते कि टेक्निकल इस टाइप के रिजल्ट और इस टाइप का बेहतर होगा, तो उनके लिए शायद एक्सेप्ट करना उतना आसान नहीं होता है। तो ये केवल शेयरिंग है। उसी तरीके से स्पोर्ट्स, जो आज की डेट में अगर हम एक एथलीट का एग्जाम्पल लें, तो फर्स्ट एंड फोर्थ वाले में जो डिफरेंस आता है, वो आप लोगों ने कई दफे रिजल्ट देखा होगा, मिली सेकेंड में आता है। तो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस की वजह से वो नहीं हारते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट, अगर वो उसको काबू करने में होते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी और मेडिटेशन भी, वो लोग चाहे हम आर्चरी बोलें, चाहे एथलीट बोलें, चाहे जो मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं, सॉकर्स बोलें, इन सभी लोगों के परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। जैसा श्रीकांत भाई ने किया, मैं उस लाइन को रिपीट करना चाहूंगा, मुझे अपने स्कूल के कार्य से आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे में जाना हुआ। अभी हम लोग पुणे गए थे, जो जापानीज टीम आई हुई थी, तो एएसआई में मैंने दोनों चीजों को उनको शेयर किया कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में आप अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं बाय मेडिटेटिव स्टेट्स और बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो दैट्स हाउ आई वाज एबल टू शेयर विद देम आल्सो। And there is a huge topic related to spirituality in wealth management. ये हमारे हार्ट क्लोज टॉपिक था रमेश भाई जी का, और इसपे मैं केवल एक शेयर करना चाहूंगा जो अभी हम लोग प्रोसेस में है। Can we work on research for purpose? कहने का मतलब, मैं किसी भी एकेडमिशियन या रिसर्चर को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाय चांस मैं भी एक एकेडमिशियन रिसर्चर बहुत हूं। हम लोगों के बहुत सारी पीएचडी हो रही हैं, लेकिन उनमें से पर्पसफुल कितनी हैं? लेकिन अगर वही रिसर्चर स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो होलिस्टिक रिसर्च पर काम करते हैं, एंड देन दैट रिसर्च गेट्स कन्वर्टेड इंटू पर्पसफुल रिसर्च। सो दैट्स व्हाट इज अवर एम। तो हम लोग उस तरीके से उसको कर सकते हैं। हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन में दिस इज डायरेक्टली एप्लीकेबल। वी नो अबाउट इट दैट इट हैज गॉट एन इम्पैक्ट इवन ऑन एग्रीकल्चर, फूड रिलेटेड दीज टॉपिक्स। एजुकेशन, इट इज ऑलरेडी वेल नोन, सो रिलेटेड टू वैल्यू एजुकेशन वी कैन अप्लाई ऑन टू इट। देन रिलेटेड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, आई विल कम अगेन, इस ये वाला टॉपिक मेरे को थोड़ा सा बहुत ज्यादा टच करता है, स्पेशली बिकॉज मैं बार बार शेयर भी करता आया हूं। सबसे बड़ी दुनिया की प्रॉब्लम डिप्रेशन करीबन हो चुकी है या होने जा रही है, और सबसे बढ़िया इम्पैक्ट उस पर मेडिटेशन का ही आता है। मेडिकेशन उसके बाद इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहला इम्पैक्ट इन कॉम्बो विद मेडिकेशन भी करेंगे तब भी आएगा, और इन आइसोलेशन ओनली मेडिटेशन करेंगे तब भी बहुत आएगा, क्योंकि इसका सभी लोगों को पता है कि स्थूल में भी उसको जो कार्य करते हैं वो पहले काउंसलिंग से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सो इन केस हमारी जो बहनें जितनी बढ़िया काउंसलिंग, वी कॉल इट ए स्पिरिचुअल काउंसलिंग, दे ऑलवेज डू इट, हर समय करते हैं, उसी को हम, वो उस स्टेज में जाए उससे पहले ही बहुत हद तक हम रोक सकते हैं, और अगर जो लोग जा चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, और उसको उसी का प्री एंड पोस्ट में डाटा अगर कर ले तो हम लोग उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो आई विल लीव दीज टॉपिक्स। अभी जो इस समय बिल्कुल करंट कुछ हमारे रिसर्चेस ऑन हुए या ऑन चल रहे हैं, उनमें सबसे प्रोमिनेंट मैं शेयर करना चाहूंगा दो तीन। एक तो अभी जैसा भाई जी ने मेरे बारे में शेयर किया, आई हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ऑनरेरी प्रोफेसर। मेरे को डिक्लेयर नहीं भी किया गया था तब भी जब मैं मलेशिया दीदी और शिकन भाई के साथ में जाना हुआ, तो वहां की बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोना, तो उनपे एक भाई हैं हमारे लच्छू भाई, उनके साथ में मैं गया था और उनका जो बेस्ट जो सरकार के द्वारा उनके यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहलाता है CISIR उस यूनिवर्सिटी के अंदर है, उनको जब हमने ये शेयर किया उनके यहाँ पे इक्विपमेंट सारे पॉसिबल अवेलेबल हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा कॉइंसिडेंस है, जो ईजी सिस्टम बाबा के घर में है सेम ईजी सिस्टम उनके यहाँ वो मलेशिया में उस सेंटर पे भी मौजूद है। तो उनके साथ और MET यूनिवर्सिटी के साथ, MET यूनिवर्सिटी नोएडा इंडिया की, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोना मलेशिया की, BKs फ्रॉम मलेशिया एंड BKs फ्रॉम इंडिया, इस तरीके से हम लोग एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं जो एक गवर्नमेंट की DST में स्कीम है सत्यम, तो वो प्रोसेस में इस समय बन रहा है, इस फरवरी के एंड तक वो सबमिट हो जाएगा। दूसरा जो एक ओपन यूनिवर्सिटी UK और MET यूनिवर्सिटी के साथ, उनके ओपन यूनिवर्सिटी में ही इटसेल्फ 3000 रिसर्चर हैं, उनके साथ मेडिटेशन एंड स्ट्रेस को लेके वी आर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। देन एक पिछले साल में कहीं जाके वो प्रोजेक्ट सबमिट हुआ था, वो सेंक्शन हो गया, अब अगले 15 दिनों में एम्स पटना और ब्रह्म कुमारीज के एसोसिएशन के साथ में वो प्रोजेक्ट अब शुरू होने जा रहा है। मतलब सेंक्शन हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन हो गया, बट अब प्रोसेस 15 दिन में अब उसका शुरू होने जा रहा है। देन यस, ये हमारे जो किदवई मेमोरियल का ऑन्कोलॉजी सेंटर जो हमारा बेंगलोर का है, उनके साथ में बहुत पहले से सेवाएं चलती रही हैं, वहां पर तो कार्य चल ही रहा है, बट अभी रिसेंटली उसको शेयर करते हुए हमारे को राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली उसमें जाना हुआ, और वहां पे एक पोस्ट होती है साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब शी इज ए साइकोलॉजिस्ट बट वो ट्रीट कर रही हैं डिप्रेशन विच इज विद द कैंसर पेशेंट, जो कैंसर पेशेंट इस प्रॉब्लम में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा और किस तरीके से हम होंगे, तो उनके उनके साथ में मिलके हम लोग प्रोजेक्ट का पूरा इवन एथिकल वे में किस तरीके से चलें, बिकॉज हमने कोई भी प्रोजेक्ट करना होता है तो उसको एथिकल क्लियरेंस लेते हैं, तो उनके साथ में प्रोसेस में जा रहा है। और दो या तीन स्कूल्स हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के दिल्ली में ही, और जिसमें एक का नाम है तमन्ना स्कूल, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जिनका डिलेड डेवलपमेंट या ADD या ADHD इनसे सफर करते हैं, उनके ऊपर राजयोग का मेडिटेशन से कैसे उनकी लर्निंग एबिलिटी में इवन थोड़े से भी चेंजेस हम किस तरीके से ला सकते हैं, वो उनके एसोसिएशन के साथ में चल रहा है। ये कुछ स्नैप्स हैं जो अभी मलेशिया की विजिट थी इंडियन हाई कमीशन मलेशिया के साथ में, बिकॉज उन्हीं के इनविटेशन पर वहां पर जाना हुआ था। और अब मैं लास्ट में आप लोगों का ध्यान इस पर चाहूंगा, ये पेपर आप लोगों को सभी को मिल जाएगा, इवन सॉफ्ट कॉपी में भी आपको मिल जाएगा। तो जो मैंने बात जहां से शुरू किया था कि आप सभी लोगों का, बिकॉज जैसा श्रीकांत भाई ने बोला कि इस बार 800-900 लोग हैं हम, और न केवल 800-900 लोग हैं वर्चुअली, तो ये सब 800-900 लोग भी डिफरेंट सेंटर्स डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्री से भी आए हुए हैं, तो हम लोग सभी जगहों पर जिस भी इस तरीके से अगर इस डाटा को फिलअप कर पाते हैं तो हमारी जो भी एक्सपर्टीज है या जो भी संभावनाएं हैं, मैं उस जो भी संभावना या जो भी एक्सपर्टीज को दो या तीन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं, बट वो दो या तीन तक लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों में से खुद कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट न्यूरो साइंटिस्ट स्टेटिस्टिशियन ये सब एक्सपर्टीज में हो सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपके संबंध संपर्क में या आपके बच्चों में उन सब में हो सकते हैं, तो उनकी सहायता से इनको जितने भी मैंने अभी ये प्रोजेक्ट का बातें किया वो सब हम क्षेत्र में ले सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैंने शुरुआत किया था सब्जेक्ट्स वाली बात, तो हमारी खुद की भी सब्जेक्ट बनने के लिए, क्योंकि हम जब स्टडी करते हैं, अगर ये जब मैंने करनाल में शेयर किया तो करनाल में करनाल की ही बहन मेडिटेशन के लिए कमेंट्री के लिए उन्हीं के द्वारा संभव हो सकता था, ये संभव नहीं था कि दिल्ली से वो जाते करनाल और फिर वो डेली उतने दिन का स्टडी कर पाते, तो वो सभी सेंटर के द्वारा ये सभी डिफरेंट फील्ड्स में जिस जिस तरीके से हमें ये पता लगता चलता है, ये अगर डाटाबेस बन जाता है तो वेदर वी टेक योर हेल्प, चाहे आप लोगों में से कुछ लोग सब्जेक्ट बने, चाहे आप लोग फैसिलिटेटर बने, फैसिलिटेटर का मतलब है चाहे वो कमेंट्री देने वाला बने, कमेंट्री बनाने वाला बने, वहां पे स्टडी को कलेक्ट करने वाला बने, या स्पिरिचुअलिटी का जैसे मैंने करनाल की बहनों का बोला 5 दिन तक जाके उसमें वो मेडिटेशन उन साइकेट्री के जो पेशेंट्स को उनको कराया गया, इस तरीके से जिस भी फील्ड में जाएं तो वो संभावनाएं इस डाटाबेस के द्वारा हो पाएंगी।
ये जो सुशील भाई ने बताया आपको समझ में आ रहे हैं क्या है? यहाँ पे जो भी भाई बहने आई हैं आप सबको ये फॉर्म मिलेगा, इसके अंदर जो भी अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं आपको उसमें टिक करना है। और जैसे हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, रिसर्च के लिए आप लोग आगे आएंगे, सब्जेक्ट शब्द अर्थ होते हैं, जब आप रिसर्च में आपके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर भरते हैं, उस समय आपको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी डाटाबेस है, चाहे आपकी अमृत वाला योग, मुरली क्लास, जो बातें रखी गई आप ऑनेस्टी से भरिए, क्योंकि आपकी इसी डाटाबेस से हम जो भी रिसर्च प्लान करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम सोचते हैं कि अमृत वाला मेडिटेशन की इफेक्ट हमारी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, अदर एस्पेक्ट में कैसे होता है, तो हमें चाहिए 500 भाई बहने जिनके अमृत वाला बहुत अच्छा है, जब से ज्ञान में चले एक बार अमृत वाला मिस नहीं किया है, या तो जब से ज्ञान में चले हैं मोर देन 70% टाइम उन्होंने योग किया है। अगर हमें डाटाबेस मिलेगा, हम आपको लेकर के जो रिसर्च हम डिजाइन कर रहे हैं तो अलग अलग स्टडी कर सकते हैं, मुरली क्लास जो रेगुलर अटेंड करते हैं उनके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, तो बाबा की ज्ञान योग को प्रत्यक्ष करने के लिए आप सबकी सहयोग चाहिए। तो मैं चाहूंगा जो भी इसमें आए सभी समय ले, आप जाने से पहले भर करके दे। यहाँ पे हमने रखा है नाम, आप नाम नहीं लिखेंगे तो चलेगा, इनिशियल्स लिख दीजिए और आपको आईडी नंबर वहां पर हम अपने आप जनरेट करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल, मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हमने टारगेट किया कि अमृत वाले स्पार्क वाले ऐसे कौन है जो अमृत वाले बहुत अच्छा करते हैं, तो हम उनकी हम टीम बनाएंगे और आपके पास आएंगे या तो आपको बुलाएंगे जहां पर आपकी ईईजी हो, या तो ब्लड सैंपल हो, या तो क्वेश्चनर वेस्ट वो भर के फिर आगे रिसर्च होगा। इसमें याद रखना, एक बार आपकी ब्लड सैंपल कहो या ई जो हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं वो हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा, तो हम उस डेटा को कहीं भी किसी भी जगह पर, चाहे बाबा के बच्चे करें या अलग अलग इंस्टीट्यूशन को साइंटिस्ट करना चाहे, हम उनको दे के कर सकते हैं। तो एक बार आप रिकॉर्डिंग देंगे तो वो हमेशा के लिए यूज होगा, इसलिए आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए हमें। फॉर्म मिल गया, आपने लिया, उसको फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह भर देंगे, उसमें आंसर प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके डाटाबेस हैं। बाबा एक मुरली में कहते ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। अभी आपके सामने मुरलियों से पॉइंट लिए गए हैं, आप जब से ज्ञान में चल रहे हैं तो आप अपनी डाटा भरेंगे और इसी के आधार पर सुशील भाई या तो जो साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं हम बाबा के बच्चों पर रिसर्च कर सकेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, समय बहुत कम, तो मैं बहन जी को कहूंगा, आप अंबिका बहन से, कि आप 2 मिनट जो हमसे शेयर कर रहे थे कि आपको किस टाइप के स्पार्क ग्रुप चाहिए, जिसमें हम प्रयोग की बात करें या रिसर्च की बात करें, हम आगे इसकी टीम फॉर्म करेंगे इस फॉर्म के आधार पर। और इसकी हार्ड कॉपी आज आपको 4 बजे तक मिल जाएगी, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि जिसे हम गूगल फॉर्म बना के रखा है, आप सबको सर्कुलेट होगा, लेकिन आपकी डाटाबेस मेरे पास आना चाहिए भरते हुए। कोई भी चीज समझ में नहीं आता पूछिए, आप पूछ करके भरिए, ठीक है? मानसी बहन अगर आप या आना चाहोगे स्टेज के ऊपर एक मिनट के लिए आइए, ताकि आपको लोग संपर्क करेंगे, आपने इसको डिजाइन किया है। अब बहन जी सुनना चाहेंगे, बहन जी इसकी महत्व कितना है आप बताइए इसके बारे में। जी
तो आप
एग्जैक्टली एंटी एज, इसको एंटी एज रिसर्च ही कहते हैं। जी 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 उसकी ये एंटी एजिंग का है, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें हम जो कर पाएंगे उसको लिया सिर्फ अभी शुरुआत के लिए, आगे की भी ये प्लानिंग है, बात करेंगे आपसे।
फर्स्टली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मानसी बहन आ रही है वो एक्सपर्ट भी हैं इसमें, वो शेयर भी बाद में कर देंगे आपको। बट इसमें भी केवल एक पॉइंट है, बहुत सारे लोग अलग फील्ड्स को यूज करते रहते हैं। हम लोगों का कोई भी रिसर्च, हम केवल इंटरेस्ट तभी लेते हैं, हम इस स्पार्क ग्रुप, जब उसमें राजयोग प्रैक्टिस इन्वॉल्व है, तभी अगर वो रिसर्च है देन ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन कोलैबोरेशन। यस दैट, फॉर दैट वी विल डेफिनेटली लव, इसीलिए हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं जैसे आपने शेयर किया। और दूसरा पॉइंट जो श्रीकांत भाई ने एक तो सब्जेक्ट वाला शेयर किया, मुझे उम्मीद है मैं दूसरा भी कन्वे कर पाया हूं, मैं उसका भी एक और एग्जांपल देता हूं। उदाहरण के तौर पे अगर हमने, ये तो एक मैंने सेक्रेटरी पेशेंट का बोला, अगर हम बच्चों के बीच में कहीं कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए कमेंट्री क्या हो, वो किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो उसमें म्यूजिक क्या हो, तो हम लोगों में से कुछ लोग म्यूजिक के एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग कमेंट्री के एक्सपर्ट, तो हम सभी लोग किसी न किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन टू, ये वाले जो फॉर्म्स हैं वो खाली आपके लिए नहीं है, अगर आप लोग उचित समझें अपने सेंटर अपने शहर और वहां पर जाकर भी वो वाला डाटाबेस करा सकते हैं।
ओम शांति। एक्चुअली ये हम यही प्लान कर रहे हैं, जैसे टीलोमेयर्स का भाई जी ने बताया, तो हम डीएनए लेवल की रिसर्च की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि मेडिटेशन का, राजयोग मेडिटेशन का डीएनए पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अभी बहुत काम बाकी है इसमें, अभी ये शुरुआत है एक्चुअली। हाँ जी, जो भाई जी आप बोल रहे थे कि मेडिटेशन का हमने नहीं देखा, वो बात सच है कि वर्ल्ड में एक्चुअली 2005 में ही ये टीलोमेयर्स का जो रिसर्च है इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला है डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को। उसके आधार पे बहुत तरह की रिसर्च स्टडीज प्लान होती है, वो आपको टेस्ट करके रिपोर्ट भी देते हैं कि आपकी टीलोमेयर लेंथ कितनी है, लेकिन मेडिटेशन का काम बहुत कम हुआ है। जैसे भाई जी ने यहाँ पे 3-4 रेफरेंसेस दिखाए तो इतना ही काम हुआ है। यस यस, एक्चुअली क्योंकि इस पे हम एक्चुअली डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन को मॉडर्न मेडिसिन एक थेरेपी की तरह अभी तक नहीं मानती है ना, तो वही शुरुआत हो रही है वर्ल्ड में, इसके ऊपर काफी काम होना शुरू हो चुका है, वो आ रहा है ना, संगम युग में ये भी आएगा, लेकिन हम इस पे बात करेंगे, डिटेल में जरूरत है बात करने की। ओम शांति।
ओम शांति। ये जो फॉर्म मिलेगा, मेरा निवेदन है हर एक भाई बहन इसको भरे, यही आपकी बड़ी सहयोग बाबा की प्रत्यक्षता के लिए है। बाकी इसको हॉनेस्टली भरे और नाम भी भले नहीं लिखे, सिर्फ आपका फोन नंबर और जो मेल आईडी है उतना ही लिखे, और डिटेल में आपका, आपका सेंटर, नाम, ये सभी क्या होगा, पब्लिश होगा, ये डरिए नहीं, कुछ भी नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा, तो इसलिए ये फॉर्म भरना अति आवश्यक है। ये डेटा वर्ल्ड में आपका बहुत वैल्यूबल है, तो इसलिए बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए इसको साधारण नहीं समझे, ठीक है मैं ये नहीं भरे तो क्या। और बाकी टीचर्स बहनों से निवेदन है, आपके सेंटर के हर भाई बहन से एक एक्स्ट्रा एक दो कॉपी लेके जाइए और सबसे भराइए। और ये बहुत, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस वाले आके कहते हैं दीदी हमारे पास मेडिटेटर्स नहीं है, आप भेजिए। तो माना दूसरे के पास भी, घर गृहस्थ में रहने वाले महात्माओं के पास भी, मंत्र जापने वाले भी इतना नहीं मिलते उनको, मेडिटेशन तो छोड़िए। तो इसलिए आपकी डिमांड जो है ना, आपकी जो वैल्यू है, जो हमारे सुशील भाई कह रहे थे, भाई बहने जो इतना डिग्रिया नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, पीएचडी नहीं है, लेकिन आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इतना प्यार प्रेम से बाबा को याद करते आप अपना स्थिति बनाते हैं, तो आपकी जो टेस्टिंग होगा उसमें बाबा की प्रत्यक्षता होगा। तो इसलिए ये आप सबकी जो फॉर्म भराना जरूरी है। और मेरा ये एक और निवेदन है, अभी बैंगलोर में सिर्फ टीचर्स बहनों की जो साइलेंस रिट्रीट हुआ था, मैं बहनों से निवेदन किया था, अब हर एक बहन जो आयु के हिसाब से वो चाहते हैं, वो आप सभी अपना टेस्टिंग कराएं। तो बहने जो भी उनकी टाइम लिमिट था तो उतना वो लोग कराए। यहाँ भी जो भी टीचर्स बहने हैं और भाई बहने हैं, तो उनसे निवेदन है आप ऐसा अच्छा स्थिति बनाओ, उसमें तीन चार बातों का सिर्फ ध्यान रखिए और आपका हमें बहुत जरूरत है। एक तो हर परिस्थिति में अंदर से आप एक शांत, एक दया भाव, प्रेम भाव, और कुछ भी बहुत गड़बड़ भी करता है, आपका सिर खाते भी है, तो भी एक दया भाव ऐसा रखे, व्यवहार करने की एक निरंतर आदत बनाइए। सेकंड वन, सदा सुबह दोपहर शाम या जब भी टाइम मिले, पांच मिनट एक मिनट, तो बाबा के पास जाके बैठ करके सारे विश्व को लाइट माइट देने का एक आदत डालिए। जैसे कि बाबा से लेके आप दे रहे हैं और उनके दुख दूर हो रहा है, तो ये जो भावना बिंदु स्वरूप में जाना, उसमें बिल्कुल एकाग्र फिर देने की, तो ये आदतें आपको नेचुरल बनानी है एक दो मास के अंदर। फिर जहां भी भाई बहन है, मतलब साइंटिस्ट अपने मिशन से आए, तो आपको खुद को भी टेस्टिंग कराइए। टीचर्स बहनों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आदत डालिए, कराइए। और आपके भाई बहने जो अच्छे योग करते हैं, ज्ञानी हैं, उनका भी कराइए, क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं है, दुनिया में दुख बढ़ रहा है, तो बाबा का एक ही हट्टी है, एक ही विधि है, एक ही परमात्म प्यार है, ताकत है, जो दुनिया के हरेक के दिल, हरेक के दर्द को मिटा सकता है। ये ग्लोरीफाइड इमीडिएटली जल्दी होना है, उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। तभी हम कह रहे थे कि दिसंबर तक वेट नहीं करना है, जाने के बाद इमीडिएटली पांच पांच लोग 25 दिन के लिए जो साइलेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो एक ग्रुप बने हर तरफ से ऑल इंडिया, और एक ही लक्ष्य, एक ही संकल्प और टाइम पर हम सब मिलके कुछ करें, जिससे एक लहर बने और उन बच्चों की टेस्टिंग हो। ये हो सकता है टीचर्स बहने सहयोग देंगे, हाथ उठाइए। जो भी दिल से ये करते हैं, और हर दिन एक एक घंटे की, सारी मास में 25 घंटे की साइलेंस का, हर एक अभी जो स्पार्कलर्स उस रूम में भी सुन रहे हैं, एक घंटा कोई भी टाइम बिल्कुल साइलेंस, सिर मुख का नहीं, मन का भी जो बाबा के पास उस एक घंटा हम पर्सनली बैठ जाए, ऐसे जो करते हैं, फिर उनकी जो स्पेशल गहरी टेस्टिंग उसमें जो रियली अच्छे रिजल्ट देते हैं और अच्छे अच्छे अनुभव है वो श्रीकांत भाई को भेजिए। और ये जो फॉर्म ये सभी समझिए, दिसंबर के अंदर हमें ठोस कुछ रिजल्ट निकालना है जिसके आधार से हमारे बाबा दुनिया के आगे आ जाए, ये हो सकता है। थैंक यू सो मच शांत।
ये जो है अभी इंग्लिश में है, इसकी हिंदी बनेगी, और जिनके पास रहेगा जो इंग्लिश नहीं समझते, आप बाजू में जो भी आपके कमरे में भाई बहन होंगे उनसे पूछ करके भर दीजिए। और हिंदी बनने के लिए एक हफ्ता लगेगा, फिर भी आपके पास रहेगा, अगर आपको कंफर्ट नहीं लगता है बाद में भेज देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आपके पास बहुत भाई बहन हिंदी इंग्लिश टू हिंदी कर देंगे, आपके लिए सहयोग दे देंगे, आप पूछ के इसको भरवा दीजिए। जी
हम सभी को ये इसलिए बोला कि एकदम बिंदु रूप की अवस्था में सारी विश्व के प्रति दिल का प्यार और दया से जो लाइट माइट देंगे उस अवस्था को बढ़ाना है, क्योंकि इससे जो गामा रे वेव आती है वो दुनिया भर के योगियों में नहीं निकलता है। तो इसलिए ये विशेष बात है जो बाबा के गॉड टॉट मेडिटेशन, भगवान ने ये मेडिटेशन जो सिखाया है उसका स्पेशल प्रूफ भी दुनिया के आगे रखना होता है, इसलिए इस अभ्यास को विशेष करें। ओम शांति।
कर रहे हैं ये सारे अभी नहीं देंगे, पहले हमारा हो जाएगा और उनको देने की भी तरीका अलग होता है, तो वो सोचेंगे उसके बारे में। जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट फॉर्म में, इसकी ऑब्जेक्टिव्स वही है, पहले बाबा के बच्चों में होगा, फिर उसको यूनिवर्सल करने के लिए तरीके अपनाना पड़ता है, तो उसको हम करके करेंगे आगे। अभी हम ब्रेक होगा ना
भाई, चीज़ बता देते हैं। ये जो फॉर्म है वैसे तो इसके आधार पे भी हम रिसर्च कर सकते हैं, पर आप इस फॉर्म को ऐसे थोड़ा ले सकते हैं, क्यों इसका नाम रखा है राजयोगी डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब है कि हम सब लोगों का वहाँ पे डेटा आ जाए, है ना। और आप देखेंगे उसमें क्वेश्चंस हैं कि लास्ट के 3 महीने के पुरुषार्थ के आधार पे ही आपको ज्यादातर लिखना है, क्योंकि पुरुषार्थ हमारा चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, तो लास्ट 3 महीने के पुरुषार्थ के आधार पे आपको आंसर्स लिखने हैं। जरूरी नहीं है कि हम उससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, पर ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे कि उसके आधार पे हम सब्जेक्ट्स को या पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे भाई जी ने बोला ऐसा, है ना। कई बार हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा मतलब हमारा डेटा तो अच्छा नहीं आएगा, वो किसी एक का कभी रिसर्च नहीं होता है, हमेशा एक ग्रुप का रिसर्च होता है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा मैं अपना नाम लिखूंगी और उसमें ये होगा कि मेरा अमृत वेला ऐसा होता है, मतलब बहुत तरह की हमारे अंदर कॉन्शियसनेस होती है, तो वैसा आप नहीं सोचें। और ये पूरा का पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, उसमें दो ऑप्शन जैसे भाई जी ने बताया कि फुल नेम, या तो फिर आप सिर्फ अपना जैसे लेखराज कृपलानी है नाम, तो एल के लिख सकते हैं, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो लेखराज कृपलानी जी का डेटा है ना। तो ऐसा है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा फॉर्म में, और कुछ भी क्वेश्चन आए तो पूछ सकते हैं भरने से पहले, मतलब थोड़ा उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए। ऊपर में एक पैराग्राफ दिया गया है, वो आप अच्छे से पढ़ना भरने से पहले, उसके बाद ही भरना उसको।
और एक बात तो खुशखबरी कि बाबा के बच्चे कैसे भी हो सबकी रिजल्ट दुनिया वालों से बहुत अच्छा आता है।
यस
ठीक है, डरने की कोई, आपकी जो भी होगा उसमें कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा जो दुनिया वालों ने अभी तक नहीं किया है, इसमें आप कॉन्फिडेंट रहिए। बिल्कुल किसी की रिजल्ट गलत नहीं आएगा, क्यों बाबा के बच्चे इतना प्यार से बाबा ने चुना है ना, मशीन कैसे कहेगा आप गलत हो, हम आपके द्वारा मशीन को ठीक करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। अभी योग के बाद ब्रेक होगा 10 मिनट, तो टोली इस तरफ ही मिलेगा, उस तरफ से नहीं जाना।